Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Kshatriya Brahmanishtha Mahamandaleshwar श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मरूप मधु बाबूजी समस्त भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा साधक जन कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का ये 12वां मंत्र है। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गौवरिष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। मध्य के कई श्लोकों में आचार्य यम ने बालक नचिकेता की प्रशंसा की और वो प्रशंसा उनके अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं थी, केवल उनके भीतर की वस्तुस्थिति संभावित आत्मज्ञान की जो योग्यता थी, योग्यता का श्रवण कर आदमी अभिमान का अनुभव करता है। लेकिन बालक नचिकेता की सबसे बड़ी एक विशेषता, आचार्य यम ने, गुरु ने, आचार्य ने, एक ब्रह्मज्ञानी ने बालक नचिकेता की बहुत स्तुति की। करना तो चाहिए था शिष्य को गुरु की स्तुति, और आज गुरु ही शिष्य की स्तुति कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? स्तुति तो भगवान की भक्त के द्वारा होती है, लेकिन कभी भगवान ही भक्त की स्तुति करने लग जाए तो समझना चाहिए कि वो भक्त इतना प्रभावशाली है, इतना उत्तम कोटि का भक्त है कि आज भगवान भी अपनी भगवत्ता भूलकर एक भक्त की तरह भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं। बालक नचिकेता इतना उच्च कोटि का शिष्य है और वो शिष्यता अध्यात्म ज्ञान को पाने की महान योग्यता है। इसीलिए बहुत प्रसन्न होकर बालक नचिकेता की नहीं, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में जो अध्यात्म को पाने की योग्यता थी उसकी प्रशंसा की उन्होंने। निमित्त थे बालक नचिकेता, लेकिन बालक नचिकेता में अभिमान नहीं है, और शायद अभिमान होता तो योग्यता खो देते। योग्य होने का अभिमान भी अपने आप में अयोग्यता है। योग्य होने का अभिमान व्यक्ति का एक संकीर्ण दृष्टिकोण बन जाता है, और योग्य होने का अभिमान अक्सर कई अयोग्य व्यक्तियों को खड़ा कर देता है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं योग्य हूं, इसका अर्थ यही है कि बहुत सारे लोग अयोग्य हैं और उनमें से मैं एक हूं, तो आत्मकेंद्रित हो जाता है। अभिमानी आदमी आत्मकेंद्रित हो जाता है, वो योग्यता के मापदंडों को भूलकर केवल अपने भीतर के अहम को केंद्र में रखकर सोचने लगता है। और ये बात भगवान को स्वीकार नहीं है। योग्य होने का अभिमान भी ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है। योग्य होने का अभिमान व्यक्ति में आ जाए, साधक होना, साधना पथ पर बढ़ती जाना, ये अलग बात है और साधक होने का अभिमान दूसरी बात है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने काक भुशुंडी का उदाहरण सुना होगा। पूर्व जन्म में वो बैठकर उज्जैन में ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की आराधना कर रहे हैं और उनका चित्त बहुत एकाग्र है, योग्यतम गुरु मिले हैं, साधना मिली है, साधना पथ पर चल भी रहे बहुत अच्छी प्रकार से, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उनके मन में सूक्ष्म अभिमान है कि मैं बहुत अच्छा साधक हूं, बहुत अच्छा साधक हूं और मेरा मन बहुत एकाग्र है, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे मन में शिव की प्रति एक निष्ठा है। और उनकी एक निष्ठा की परिभाषा अभिमान के संस्पर्श से दूषित हो गई, एक निष्ठा भी अभिमान के संस्पर्श से दूषित हो गई। शिव के प्रति एकनिष्ठ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकनिष्ठ होने के अभिमान ने उनके निष्ठा को दूषित कर दिया और वो भगवान श्रीराम की निंदा करने लगे। भगवान शिव की श्रेष्ठता का प्रतिपादन एक निष्ठा हो सकती है, लेकिन भगवान राम की निंदा शिव के एक निष्ठा का प्रमाण नहीं है। लेकिन निंदा करने लगे राम जी की, अयोध्या की निंदा करने लगे, बोले कहां ये उज्जैन नगरी, कहां शिव बाबा, कहां यहां का ऐश्वर्य, मालव प्रदेश, बोले भगवान की कृपा बरसती यहां कण कण में, पेड़ पौधों में। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, क्योंकि सूक्ष्म अभिमान था। वहां भगवान की श्रेष्ठता के प्रतिपादन की अपेक्षा उसके उपासक होने के श्रेष्ठता के भाव में वो दूषित हो गए थे। कई बार हम भगवान की प्रशंसा नहीं करते हैं, कई बार हम अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, इतने बड़े भगवान और उस इतने बड़े भगवान के उपासक हम, और इसलिए हम भी तो श्रेष्ठ हैं। अंत में हुआ यही, एक दिन ध्यान में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं और श्रेष्ठता का अभिमान उनके भीतर है। गुरु आए, देखा भी, उतनी एकाग्रता भी तो नहीं थी, मालूम भी पड़ा। गुरु आए ये मालूम भी पड़ा, उठना था, स्वागत करना था, कम से कम उठ के खड़े होना था, लेकिन सोच रहे थे मैं तो भगवान का भजन करता हूं। और गुरु आए तो क्या, ठीक है, क्या मैं माला छोड़ के उठ के खड़ा हो जाऊं, पूजा के समय उठ के खड़ा हो जाऊं। वो बैठे थे, वो सूक्ष्म अभिमान, योग्य होने का सूक्ष्म अभिमान, भगवान का बहुत बड़े भक्त होने का सूक्ष्म अभिमान साधना को दूषित कर गया। और उसका परिणाम भगवान शंकर ने उनको श्राप दिया। भगवान शंकर ने कहा कि भैया गुरु तो क्षमाशील है, वो तो तुम्हें दंड नहीं देंगे, लेकिन तुमने अपराध तो किया। और उन्होंने फिर उनको दंड दिया। एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से साधकों में योग्य होने का अभिमान होता है। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज हमने सुना है गुरु अपने शिष्य को खोजते हुए आते हैं, लेकिन बोले आज तक हमारे पास कोई नहीं आया, बोले आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं आया हमको खोजते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को योग्य समझता है, सोचता है कि मैं तो योग्य हूं और किसी गुरु को मैं मिलूंगा तो गुरु ही धन्य होगा। ये योग्य होने का जो अभिमान है ये अपने आप में अयोग्यता है। और बालक नचिकेता के जीवन में योग्य होने का कोई अभिमान नहीं है, योग्य होने का कोई अंदर से भाव नहीं, उल्टा वो सोचते हैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, मुझे परमात्मा को पाना है और वो परमात्मा कितना बड़ा है। परमात्मा के बारे में एक तरफ आप परमात्मा रखो और दूसरी तरफ स्वयं अपने आप को रखो, हम कितने छोटे हैं, कहां सागर कहां बूंद। जब बड़ी चीज हम देखते हैं तो छोटे के प्रति अभिमान की संभावना नहीं रहती। आप सागर को देखेंगे तो क्या आपको लोटे के जल में अभिमान होगा? आप एक बाल्टी भर के पानी लेके बैठे हैं और आपके सामने समुद्र है, तो आपको पानी वाला होने का कभी अभिमान नहीं होगा। जब आप सागर को भूलेंगे तब वो बाल्टी का पानी भी आपको अभिमानी बना देगा। आप सकल शास्त्रों को देखेंगे, उसकी दृष्टि से हमारा ज्ञान तो बूंद की तरह है। सकल शास्त्रों पर दृष्टि होगी तो हमारा जो ज्ञान है हमें अभिमान में कभी नहीं ले जाए। सच्चा साधक, उसकी दृष्टि परमात्मा पर होती है, उसकी दृष्टि गुरु पर होती है, उसकी दृष्टि शास्त्र पर होती है, और इसीलिए कभी वो योग्य होते हुए भी अभिमानी नहीं बन पाता है, सदा विनम्र। और ये विनम्रता अध्यात्म के जीवन की प्रथम योग्यता है। आप जितने भी साधक के जीवन के लक्षण पढ़ते हैं उनमें विनम्रता ये सर्वोच्च गुण है, साधक का सर्वोच्च गुण है। बालक नचिकेता ने सुनी आत्म प्रशंसा और सुनने के बाद भी उनका चित्त अभिमान में नहीं गया, उल्टा वो करुणा का अनुभव कर रहे थे, उल्टा भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद मैं परमात्मा को पालूं। आत्मविश्वास जग रहा था। आत्म प्रशंसा सुनकर अभिमानी नहीं होना है, आत्मविश्वास में प्रवेश करना है। कोई आदमी बोलता हो कि आप बहुत अच्छे हैं तो वहां अभिमान करने की जरूरत नहीं है, वहां केवल आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। आत्मविश्वास जितना जगेगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। हमें कोई बोलता हो कि आप बहुत अच्छा ध्यान करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, ओहो अच्छा और हम करेंगे और करेंगे, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। सामने वाले की प्रशंसा ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए सही होने का प्रमाण है। हमारी प्रशंसा कोई कर रहे हैं तो इतना ही है कि हम सही रास्ते पर हैं। बालक नचिकेता बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए, अभिमानी नहीं बने। अंतिम आचार्य यम ने बालक नचिकेता को बोला, बेटा तुम बहुत गुण संपन्न, आध्यात्मिक जीवन की सारी योग्यताएं तुम्हारे अंदर हैं, चलो अब मैं तुम्हें उस आत्मा के बारे में बता देता हूं, को आत्मा कैसा है। अब इस श्लोक में उन्होंने आत्मा की प्रशंसा की है, माने जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो वो लक्ष्य क्या है, और ये जो प्रशंसा है आत्मा की बड़ी गूढ़ प्रशंसा है। जैसे अनात्म भौतिक पदार्थों के बारे में आपको सूचना दी जाए वैसा बिल्कुल नहीं है। तम दूरदर्शम गूढ़ मनुप्रविष्टम, तम माने जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो बड़ा गूढ़ बहुत दूरदर्श, जिसको जानने के बाद व्यक्ति हर्ष और शोक का परित्याग कर देता है। आत्म तत्व दूरदर्श है ऐसा कहा उन्होंने। आप जिसको जानना चाहते बहुत कठिनता से दर्शन का विषय बनने वाला पदार्थ है, और ये जो काठिन्य है ना, ये काठिन्य वस्तुगत नहीं है, काठिन्य आत्मगत नहीं है, ये काठिन्य दृष्टा की दृष्टि, दृष्टा की योग्यता, पथिक की चलने की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको 10 किलोमीटर दूरी को पार करना है और आपके सामने 100 लोग हैं और 100 लोगों को आप बोलना कि 10 किलोमीटर दूरी पार करना है, वो लक्ष्य आपका वहां तक है जाना है, तो अब 100 लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अपनी अपनी अलग अलग होगी। उसमें कोई नवयुवक होगा तो बोलेगा मैं तो 5 मिनट में पूरा कर लेता हूं। अरे बोले 10 किलोमीटर। और कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसके घुटनों में दर्द है, उठने बैठने में तकलीफ है, उसको बोलो कि 10 किलोमीटर उस दूरी को पार करना, वो बोलेगा संभव नहीं है, वो बोलेगा बहुत दूर है, संभव नहीं है। कोई बोलेगा आधे तक जा सकते हैं, कोई बोलेगा जा सकते लौट नहीं सकते। लेकिन इस सारा जो वर्णन है उसके बारे में कठिनता का, सरलता का, वो लक्ष्य से मतलब नहीं, उसका चलने वाले व्यक्ति से मतलब है। आप चलने वाले हैं, वो चलने वाले के आधार पर, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वो कितना कठिन है और कितना सरल है। वही एक चीज है बहुत सरल हो सकती है और वही चीज बहुत कठिन हो सकती है। इसलिए काठिन्य ये वस्तुगत नहीं है, ये चलने वाले के योग्यता पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि आत्म तत्व दूरदर्श है। दूरदर्श माने बहुत कठिनता से उसको हम पा सकते हैं, ऐसा है। अब यहां जो काठिन्य है ना, ये बहिर्मुखता का काठिन्य है। अब हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, ज्ञान को पाने की 6 इंद्रियां हैं और कर्म को पाने की 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब इस बात को बहुत अब ध्यान देके सुनेंगे। हमें किसी भी चीज को पाना है तो पाने के लिए साधन हमारे पास क्या है, इतना तो निश्चित सत्य है कि परमात्मा धन के द्वारा पाया जाने वाला पदार्थ नहीं है कि हम बाजार में जाते और कुछ पैसा देकर के उसको खरीद लेते। इसलिए साफ साफ बोला कि धन से, जन से, बाहरी योग्यताओं के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा उस परमात्मा को पाना संभव नहीं है। परमात्मा को पाने के ही उपाय 5 ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियों के कर्मेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियों के द्वारा तो उसको पाया नहीं जा सकता है, चल के नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि कहीं दूर तो है नहीं वो आत्मतत्व। यहां पर जो बात है ना पाने की, ये अपने आप को पाने की बात है। पहले आपको लक्ष्य बता दें, उसके बाद साधन का निर्णय करें हम। यहां कठोपनिषद में बालक नचिकेता ने जो पाना चाहा वो चीज क्या है, पहले आप लक्ष्य को तो तय कर ले, फिर आपको साधन समझ में आएगा। ये साधन की जो कठिनता है समझ में आएगा, लेकिन पहले लक्ष्य तो तय हो। बालक नचिकेता कौन सी चीज पाना चाहते हैं? लोक लोकांतर। बालक नचिकेता को स्वर्ग नहीं चाहिए पक्का, क्योंकि स्वर्ग माने भोग हैं, जैसे यहां के भोग वैसे वहां के भोग। अंतर क्या है? अंतर तो बहुत थोड़ा अंतर है, गुणात्मक अंतर है, वस्तु में पदार्थ में अंतर नहीं है। वहां भी लोग हैं, यहां भी लोग रहते हैं, यहां भी मनुष्य है, वहां भी मनुष्य हैं। नाम देवता होगा लेकिन है तो मनुष्य, कोई गुणात्मक अंतर है। वहां ज्यादा सुंदर होंगे, यहां थोड़ा कम सुंदर होंगे। वहां भी नदी नाले। एक दिन मैं ऐसे ही बोल रहा था तो मैंने बोला स्वर्ग में मच्छर होते होंगे कि नहीं, क्यों होते होंगे कि नहीं? हाँ, चलो मच्छर की तो बात में आपको बाद में पूछता हूं। वहां कोई जंतु जानवर होते होंगे कि नहीं? कोई वहां विभिन्नता होगी कि नहीं? पेड़ पौधे जीव जंतु नदी नाले होंगे कि नहीं? नहीं होंगे तो वहां आनंद ही नहीं होगा। क्या इंद्र होंगे, गद्दी पर बैठे रहेंगे और देवता होंगे, बाकी कोई चीजें नहीं होगी क्या? रथ होगा, वहां हाथी का वर्णन आता है, जब हाथी है तो उसको खाने के लिए कुछ चारा भी होगा। क्यों मधुबाबू, क्या वो पत्थर था क्या? अरे भाई हाथी है तो उसको खाने के लिए चारा भी होगा, वो चलता भी तो था, कोई मंच मशीन थी क्या? कोई यंत्र तो था नहीं, और वहां पर पशुओं की भी बात आती है। जब वो उर्वशी कोई आई थी तो उसके पास दो भेड़ थे कि नहीं, दो भेड़ के बच्चे हैं। वो स्वर्ग से उन्होंने भेड़ के बच्चे लाए थे, पृथ्वी लोक पर जब आई तो दो भेड़ के बच्चे थे, और दो भेड़ के बच्चे थे तो ऊपर उसकी मम्मी भी तो होगी, तो कोई एक भेड़ तो होगा नहीं, वहां बहुत सारे भेड़ भी होंगे। वो बात अलग है कि वो भेड़ अच्छे होंगे वह स्वर्ग के भेड़ तो बहुत सुंदर होंगे, तो वहां पर फिर बहुत सारे जंतु जानवर होंगे लेकिन देखने में बहुत सुंदर होंगे। आप डिस्कवरी चैनल में देखना, बहुत अच्छे अच्छे जानवर आपको देखने को मिलते हैं। वहां चारा भी होगा, बहुत सारी विभिन्नताएं भी होंगी, और जो सारी चीजें हो तो मच्छर भी होंगे पक्का, और इतनी सारी चीजें हैं तो थोड़ा बहुत गंदगी भी होगी, ऐसा नहीं है, इसलिए लिखा है उसमें। वहां भी दुख है, यन्न दुखेन संभिन्न, मसल वो दुख से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी बोले वहां भी दुख है, और वो कैसा दुख है उसका वर्णन आया हुआ है। एक उदाहरण दिया है, ये स्वर्गलोक में दुख कैसे होता है, मात्रा कम है लेकिन अनुभूति ज्यादा है, और अपने यहां पर दुख की मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा है, और स्वर्ग में दुख की मात्रा कम है और अनुभूति ज्यादा है। उदाहरण दिया है, जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है आपको, और उस गर्मी के समय कोई एक चिंगारी आ जाए अग्नि की, और वो चिंगारी आपके शरीर में टच कर दे तो आपको जलेगी कि जलाएगी कि नहीं, आपको जलाएगी। आप बैठे हैं, भीषण गर्मी है, और कहीं से चिंगारी आई, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी चिंगारी आई और आपके हाथ पर बैठ गए, आपको एकदम जलन का अनुभव होगा। आप देखना इसकी मात्रा, आप गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा के किनारे कोई बाबा अग्नि जला के बैठे हुए हैं, बहुत ठंडे ठंडे जल से आपने नहाया, नहा करके जैसे बाहर आए, और उस समय भी एक चिंगारी आई और आपके पीठ पर बैठ गई, तो उस समय आपको जलन का अनुभव होगा कि नहीं, तो वो कम होगा कि ज्यादा होगा, थोड़ा आप अनुभव से बताओ। गर्मी के दिन में यदि कोई चिंगारी आपको टच भी कर जाए तो उतना ज्यादा आपको अनुभव नहीं होगा, ध्यान देना, ये सापेक्षित है। आप स्नान करके बाहर आए और आप एकदम ठंडा ठंडा अनुभव कर चुके हैं, और चिंगारी आप आपके पीठ पर बैठ गए, वो ज्यादा आपको जलन करेगी, वो ज्यादा जलन करेगी। पहले ठंडे का अनुभव किया और उसके बाद जो आपको वहां जलेगा तो बहुत तेजी से जलाएगा, आग आग आपको ज्यादा आग मालूम पड़ेगी। कभी आपने ध्यान दिया आग ज्यादा सुखद आपको कब मालूम पड़ती है, सापेक्षित आप ठंड में होंगे ना तो आपको आग ज्यादा आग मालूम पड़ती है, और गर्मी के समय आग ज्यादा आग नहीं मालूम पड़ती है, आपको आग से आनंद का अनुभव नहीं होता है। गर्मी का समय है, आपको आनंद का अनुभव नहीं होता है, आपके शरीर को उतनी सुखद चुभती नहीं है, आपको आप बहुत ज्यादा सम्मान में जीवन जीते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान में, और किसी ने आके छोटा सा अपमान कर दिया तो वो अपमान आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है, और जिसका हमेशा अपमान होता रहता है और उस आदमी का कोई अपमान कर दे तो वो आदमी बोलेगा ये तो होता ही रहता है। जो आदमी हमेशा दुखी है और उस आदमी को थोड़ा दुख मिल जाए तो वो बोलेगा ये तो दुख हमको होता ही रहता है, लेकिन हमेशा सुख में ऐश्वर्य में भोग विलास में रहने वाले आदमी को और कभी दुख मिल जाए वो सहना बहुत कठिन है। वो दुख होता है कम लेकिन उसकी वेदना बहुत ज्यादा गहरी होती है, उसकी वेदना बहुत गहरी होती है। अब हमेशा आप एयर कंडीशन में रहते हैं, हमेशा घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन, और आपको कभी ऐसे स्थान पर रहना हो तो जहां एसी की कोई सुविधा नहीं है, आप परेशान हो जाओगे, पसीना पसीना हो जाओ, हाय 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 जल्दी चलो बम्बई जल्दी चलो, या बंबई में रहने वाले बच्चे गांव में नहीं जा पाते हैं, और गांव में जाते भी हैं तो जल्दी जल्दी बंबई भाग आते हैं। कारण क्या है? गांव के लोग भी तो गर्मी सहन कर रहे हैं, वहां भी लोग धूल खा रहे हैं, लेकिन वो गर्मी वो धूल उसको ज्यादा दुख नहीं दे पाती। और एक हमेशा एसी में रहने वाला आदमी वहां जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है। तो शास्त्र ने यही बात कही, स्वर्ग में बहुत सारी सुख सुविधा है, बहुत सारी सुख सुविधा, बहुत सुख है, लेकिन वहां जब दुख होता है तो वो दुख बहुत गहरी वेदना दे देता है। अब इंद्र बहुत ऊपर बैठता है, देवताओं के ऊपर बैठता है, बहुत सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन जब वो दूसरी अहिल्या को देखा तो ध्यान देना आप कितनी बड़ी पीड़ा है उसको, वो चीज नहीं है मेरे पास। इतनी सारी चीजें होते हुए भी एक चीज का अभाव मालूम पड़ा, और वहां पर भी दुख है, असुर लोग आते हैं अपमानित कर देते हैं, वो अपमान का जो दुख है वो बहुत गहरा है। माने वहां पर दुख कम है लेकिन उसकी वेदना ज्यादा है, और यहां पृथ्वी लोग में मृत्यु लोग में दुख भी ज्यादा और उसकी वेदना भी ज्यादा। यहां इतनी असुविधा है कि असुविधा भी असुविधा मालूम नहीं पड़ती है, और वहां इतनी ज्यादा सुविधा कि थोड़ी सी असुविधा भी ज्यादा मालूम पड़ती है। सारी चीजें वहां भी हैं, सारी चीजें वहां भी हैं। स्वर्ग में भी आप जाएंगे तो सारी चीजें वहां पर भी दुख हैं। इसलिए उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे चिंगारी एक आदमी को जैसे जलाती है, दुख देती है, वैसे वहां पर भी दुख है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा था कि हमारे पास जो आत्म तत्व की जो परिभाषा है, लोक लोकांतर की परिभाषा नहीं है। यहां बालक नचिकेता ने क्या मांगा? स्वर्ग नहीं मांगा। कारण क्या? उनको मालूम था कि यहां के जैसे विषय वहां के जैसे विषय हैं, वैराग्य यहां है, यहां के राज्य सुख वैभव वैराग्य है उसके प्रति, और स्वर्ग के लोगों के प्रति भी वैराग्य है उनके मन में। इसलिए यहां इनके जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, लोक लोकांतर भी नहीं है। आखिर पाना क्या चाहते हैं? बालक नचिकेता ने कहा कि मैं उस आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं, जाना नहीं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। बालक नचिकेता का मोक्ष जाके पाया जाने वाला नहीं है, जानकर पाया जाने वाला है। आप इस शब्द पर ध्यान देंगे, जाकर पाए जाने वाली चीज अलग होती है और जानकर पाए जाने वाली चीज अलग होती है। आपको जाकर के पाना है, जैसे आपको पाना है हरिद्वार को, आपको गंगा को पाना है, तो गंगा को आप कैसे पाओगे? आप जाके पाएंगे या आप जान के पाएंगे? ये क्रिया साध्य है, कर्मजन्य है। आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, गंगा जी का पाना मने वहां जाना है, क्रिया साध्य है, कर्मजन्य है। आपको यहां से पैदल, बाय कार, ट्रेन, प्लेन, आपको जैसे जाना है, क्रिया साध्य है। आप प्लेन से जाएंगे तो समय कम लगेगा, पैदल जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन दोनों भी क्रिया साध्य है। प्लेन से जाना भी क्रिया साध्य है। जो यहां नहीं है वहां है, दूर देश में, जो दूसरे रूप में है उसको यदि पाना है तो वहां क्रिया करनी पड़ेगी, वो क्रिया साध्य वस्तु है।